कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के नित्य सत्रों के 36वें दिवसीय सत्र में। अंत्यलीला हमने प्रारंभ की है, कल हमने अध्याय 9 और 10 इनकी चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि अध्याय 9 गोपीनाथ पट्टनायक, इनके ऊपर महाप्रभु की कृपा। तो गोपीनाथ, एक दिन की बात थी कि जितने महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में थे तो लोग चिल्लाते चिल्लाते आते हैं और कहते हैं कि गोपीनाथ पट्टनायक जो है उन्हें चंगे पे ऊपर चढ़ाया गया है, मतलब उनका अभी जो है वो तलवारों के ऊपर उन्हें फेंका जाएगा और उनका जान चला जाएगा। तो सारे महापुरुष से विनती कर रहे थे कि आप बचाइए, भवानंद राय का पुत्र है वो, आपकी कृपा पूरे परिवार के ऊपर है तो बचाए। महाप्रभु कहे कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से वो सारा वृत्तांत महाप्रभु पूछते हैं कि क्या हुआ है, और वो सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि किस प्रकार से 2 लाख कौड़िया देना उनका जो है वो बाकी है, और राजा ने कहा था कि आप कुछ कीजिए गोपीनाथ जी को। तो राजकुमार गया था और उनके जो घोड़े थे उनका मूल्य उन्होंने कम लगाया, और फिर थोड़ा व्यवहार में गलती हो गया, वहां पर दोनों के बीच में अनबन हो गई और फिर राजकुमार ने उन्हें चंगे पे ऊपर चढ़ा दिया था। तो महाप्रभु कहे कि देखो राजा की गलती नहीं है इसके अंदर, गलती तो केवल गोपीनाथ पट्टनायक की हमें दिख रही है। तो फिर महाप्रभु कहते यदि आप उसकी रक्षा चाहते हैं तो आप जो है वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना कीजिए, और सारे भक्त फिर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं। और उसके पश्चात जो है वो हरिचंदन जाके राजा को सूचना देता है कि इस प्रकार से जो है वो चंगे के ऊपर चढ़ा गया है, उनका जान चला जाएगा तो हमारे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो फिर वो राजा उसे आज्ञा देते कि आप व्यवस्थित करो, फिर वो हरिचंदन जाके राजकुमार को समझाता है, फिर राजा सबको बुला के मंत्रणा करके सुलझा देते हैं उस मैटर को वहीं पे। और फिर जो है वो राजा गोपीनाथ पट्टनायक का सत्कार करते हैं, शॉल वगैरह रेशमी उन्हें पहनाते हैं, उनका वेतन दुगना किया जाता है, उनकी नौकरी वैसी की वैसी रखी जाती है, और जो 2 लाख कौड़ियां थी उसे भी बकाया माफ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उनके ऊपर कृपा हो गई। फिर महाप्रभु एक दिन जाते हैं भवानंद राय के घर पे, सारे प्रणाम करते हैं महाप्रभु को, और फिर उस समय गोपीनाथ पट्टनायक महाप्रभु से कहते हैं कि तो आपकी कृपा थी इसके कारण हम लोग बच गए, नहीं तो ये असंभव था। तो गोपीनाथ पट्टना कहते कि ये जो कृपा मुझे मिली है ये वास्तव में कृपा नहीं, ये तो गौण कृपा है, मुख्य कृपा आपकी जो भगवत प्रेम प्राप्त होना, ये मुख्य कृपा है जो रामानंद राय वाणीनाथ इन्हें प्राप्त हुई है, तो मुझे भी वही चाहिए। और इस प्रकार से महाप्रभु उनके ऊपर भी कृपा प्रदान करते हैं। और फिर 10वें अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से सारे भक्त जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते हैं, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, शिवानंद सेन, राघव पंडित, सब कुछ ना कुछ लेके आते हैं अपने साथ प्रसाद महाप्रभु के रूप, और सारा गोविंद को देते हैं और गोविंद को कहते हैं कि खिला देना महाप्रभु को। तो महाप्रभु एक बार नहीं सारे भक्त गोविंद को पूछते कि महाप्रभु को खिलाया खिलाया, तो गोविंद को जवाब देने के पास कुछ होता नहीं है क्योंकि महाप्रभु नहीं खाए थे अभी तक, वो सब घर के कोने में एकत्रित किया हुआ रहता है। तो फिर महाप्रभु एक दिन बोलते हैं कि सारा प्रसाद लेके आओ, सारा ग्रहण कर लेते हैं। और फिर दूसरे दिन राघव पंडित की झाली भी खुली जाती है और उसमें फिर महाप्रभु देखते हैं तो सुगंध लेके उसका जो है वो आस्वादन करते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं कि इतना सुंदर बनाया हुआ है। और जब सारे भक्त आए थे महाप्रभु सबको लेके जब कीर्तन करते थे, और कीर्तन के पश्चात एक दिन की बात है जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तो गोविंद जो पांच संवाहन करना उनका कार्य था हर दिन प्रसाद के पश्चात जब महाप्रभु विश्राम करते थे और महाप्रभु जब सो जाते थे तो उसके पश्चात वो प्रसाद ग्रहण किया करते थे। तो उस दिन पांच संवाहन कर रहे थे महाप्रभु के करने के लिए जा रहे थे तो महाप्रभु कहते कि महाप्रभु मुझे अंदर जाना है। महाप्रभु कहते मुझे मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तो वो वस्त्र डालता है महाप्रभु के शरीर के ऊपर और लांग कर जाता है और चरण संवाहन करके वहीं पर बैठ जाते हैं। तो महाप्रभु जब जग जाते हैं तो पूछते कि अभी तक यही है प्रसाद नहीं लिया, तो कहते कि आप सोए थे मैं कैसे जाऊं यहां से आपको लांग कर। तो महाप्रभु पूछते कि आप अंदर आए बाहर कैसे नहीं जा सकते वैसे ही जाने का, तो कहते वो जवाब नहीं देते, वो केवल मन में सोचते है कि आपकी सेवा के लिए मुझे नरक में जाना पड़े अपराध करके तो भी चलेगा, लेकिन मैं स्वयं की संतुष्टि के लिए अपराध तो छोड़ दो, अपराध आभास से भी मैं दूर रहता हूँ। तो इस प्रकार से गोविंद की सेवा का भी वर्णन वहां पर आता है। और फिर इस प्रकार से महाप्रभु सब सारे भक्तों के यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए जाते हैं, शिवानंद सेन के यहाँ पर जाते हैं, और सारे वृत्तांत जो हमने कल उसकी चर्चा की थी। तो इस प्रकार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय 11 जिसका शीर्षक है हरिदास ठाकुर इनका महाप्रयाण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कविराज गोस्वामी सारे भक्तों को वंदना करते हैं सर्वप्रथम, और कहते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इन सारे भक्तों की कृपा के कारण लिख पा रहा हूँ, मुझ में लिखने की तो कोई शक्ति है ही नहीं, मैं एक पतित जीव हूँ और मैं अपने स्वयं को शुद्ध करने के लिए ही केवल ये चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। जय जय गौर भक्तगण गौर यार प्राण सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान। जय गौर भक्तगण गौर यार प्राण, उन चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो जिनके चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्राण है। सब भक्त मिली मोरे भक्ति देह दान, सारे भक्त एकत्रित मिलके यदि मुझे दान देंगे भक्ति का तब मेरे जीवन में कुछ हो सकता है। एई मत महाप्रभु नीला चलेवास संगे भक्त लैया कीर्तन विलास। इस प्रकार से महाप्रभु सारे भक्तों के संग में रहा करते थे और दिन के समय उनका नित्य क्रम था कि जगन्नाथ जी का दर्शन करना, मध्यान्ह में समुद्र स्नान करना, भक्तों के यहाँ पे प्रसाद पाना और कीर्तन करते रहना, ये उनका नित्य क्रम हुआ करता था। और रात के समय में महाप्रभु भगवान से विरह अनुभव करते और केवल स्वरूप दामोदर और राय रामानंद वो उन्हें कुछ सांत्वना देते थे, वो कुछ श्लोक सुनाया करते थे, इस प्रकार से कुछ गीत सुनाया करते थे, तब जाके महाप्रभु का विरह थोड़ा शांत होता था। लेकिन फिर भी रात जो बीतनी बहुत मुश्किल रहा करती थी। और कृष्ण के विरह में महाप्रभु अलग अलग दिव्य भाव उनके शरीरों में जो है वो प्रकट किया करते थे। एक दिन की बात बताते हैं कविराज गोस्वामी, गोविंद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके हरिदास ठाकुर इनके पास जाते हैं। और हरिदास ठाकुर उस समय काफी वृद्ध हुए थे लेकिन उस समय थोड़े बीमार भी थे शायद, और वो लेट कर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। देखे हरिदास ठाकुर करिया छे शयन मंद मंद करिते छे संख्या संकीर्तन। गोविंद ने देखा कि हरिदास ठाकुर जो है वो शयन कर रहे लेट रहे बिछाने के ऊपर और मंद मंद करिते छे संख्या संकीर्तन, मंद धीरे 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 जो है वो नाम संकीर्तन वहां पर जो है वो कर रहे थे। गोविंद कहते हरिदास ठाकुर जी आप उठिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आज तो मैं उपवास कर रहा हूं। गोविंद पूछते क्यों क्या हो गया उपवास क्यों कर रहे हैं। संख्या कीर्तन पूरे नहीं के मते खाइब महाप्रसाद आनिया छे के मते उपेक्षिब। हरिदास ठाकुर के मंदिर मन में द्विधा चल रही थी, अभी तक मेरे जो संख्या पूर्वक नाम जो मैं करता हूँ रोज 3 लाख वो पूरी नहीं हुई है, और जब तक पूरी नहीं होती तब तक मैं कुछ कार्य भी नहीं कर सकता, और आप तो प्रसाद लेके आए तो मैं प्रसाद की उपेक्षा भी नहीं कर सकता, तो क्या करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर थोड़ा सा रंच मात्र प्रसाद लेते हैं और उसका उसके जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, प्रसाद को वंदन करके रंच मात्र प्रसाद जो उन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर इनके पास आते हैं और महाप्रभु पूछते हैं कि कैसे हो आप? ठीक हो हरिदास जी? गोविंद बता रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि देखिए मेरा शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन मेरे मन और बुद्धि जो है वो अस्वस्थ है। महापुरुष से क्यों, क्या हो गया आपकी मन और बुद्धि को? प्रभु कहे कोन व्याधि कहत निर्णय, त्यों कहे संख्या कीर्तन ना पूरे। महापुरुष से क्या वादी हो गया तुम्हारे मन और बुद्धि को? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरा शरीर तो स्वस्थ है लेकिन संख्या पूर्वक जो है वो मैं कीर्तन नहीं कर पा रहा हूं। संख्या पूर्वक मैं, मेरी संख्या पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण मेरा मन क्षुब्ध है। तो महाप्रभु कहते हैं हरिदास जी आप अभी इतने वृद्ध हो गए हैं, आपने अभी ये माला का प्रण आपका कम कर देना चाहिए। आप माला कम नहीं, कम क्यों नहीं करते? पहले से आप वृद्ध है, अभी आप बीमार भी है, तो माला की संख्या आप घटा दो। आपका देह जो है वो सिद्ध देह है और ये आप एक साधन का क्यों आग्रह कर रहे हो? ये साधना 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 जो है ये साधना का आप आग्रह मत करो क्योंकि आपका देह अभी सिद्ध देह हो गया है। जैसे हमें दो देह होते हैं, एक है साधन देह साधक देह और दूसरा होता है सिद्ध देह जो हम परिपूर्णता प्राप्त लेते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति के बाद, उसे कहते हैं सिद्ध देह। उस सिद्ध देह में हम भगवान की सेवा करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं आपका तो पहले से ही सिद्ध देह है, आप साधना का आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। और महाप्रभु कहते हैं लोक निस्तारिते यही तोमार अवतार ना मेरे महिमा लोके करिला प्रचार। आपका अवतार इसीलिए हुआ था कि आप सारे लोगों का उद्धार करेंगे और नाम की महिमा का प्रचुर मात्रा में प्रचार करेंगे। और वो तो सब आपने अभी पहले से ही कर रखा है तो आपको आपको अभी उतनी मालाएं करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल माला को कम कर सकते हैं। देखिए महाप्रभु स्वयं आके हरिदास ठाकुर को कह रहे कि आप माला कम करो। हमें यदि भगवान हमारे सामने आके यदि आप भगवान कहे कि आप माला कम कर दो तो हम तो तुरंत उछल कूदने लगेंगे कि वाह भगवान स्वयं बता रहे क्या बात है। तो हरिदास ठाकुर व्यथा बताते हैं कि नहीं महाप्रभु ऐसा नहीं है। हरिदास ठाकुर कहते हैं मेरा निवेदन सुनिए। ही न जाति जन्म मोर निंद्य कलेवर ही न कर मेर तमोई अधम पामर। एक तो मेरा जन्म हीन जाति में हुआ है, निंदे कलेवर मेरा शरीर भी जो है वो निंदनीय है, हीन कर्म रत मेरे कर्म भी सारे हीन है और मैं अधम बिल्कुल पामर व्यक्ति हूँ। अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला रवरव है ते काड़ी मोरे वैकुंठे चढ़ाईला। आपने क्या किया है महाप्रभु, जो मैं अदृश्य हूँ जो देखने के लिए योग्य नहीं हूँ, अस्पृश्य हूँ जिसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, स्पर्श करने से कोई व्यक्ति पतित हो जाएगा, आपने उसका अंगीकार किया है और रौरव नरक जाने से मुझे रोक के मुझे आप वैकुंठ लेके जा रहे हो, ये आपकी कृपा है। आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, आपने कई प्रकार से मुझे नचाया है। अद्वैताचार्य इनके यहाँ पे मैं बिल्कुल पात्र नहीं था लेकिन श्राद्ध पात्र आपने मुझे खिलवाया है, आपने बहुत कुछ करवाया है मेरे से। और मेरे विचार से मुझे ऐसे लग रहा है महाप्रभु कि शायद बहुत जल्दी आप अपनी लीला इस धरातल पर समाप्त करने वाले हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं उस जो आपकी जो लीला होने वाली है, आप जो लीला को समाप्त करने वाले हैं आपकी इस धरातल से, उसे मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसलिए मेरी इच्छा है कि आपके सामने मैं मेरा देह त्याग दूं। सी लीला प्रभु मोरे कभू ना देखाइबा अपनार आगे मोर शरीर पड़ीबा। आपकी वो लीला कृपया करके आप मुझे मत दिखाइए और आपके सामने मेरा शरीर पड़े, यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। और क्या किस प्रकार से मैं देह को त्यागूं वो भी अभिलाषा व्यक्त करते हैं। हृदय धरिमु तोमार कमल चरण नयने देखमु तोमार चांदवदन। हृदय पर मैं आपके चरण कमल रखू और नयने देखमु तोमार चांदवदन, आंखों से मैं आपका सुंदर चेहरा निहारता रहूं। जिवाय उच्चारिमु तोमार कृष्ण चैतन्य नाम एई मत मोर इच्छा छाड़ीमु प्राण। और मेरी जिह्वा निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य इसका उच्चारण करते रहे और ऐसा उच्चारण करते समय मैं प्राण छोड़ू, ऐसी मेरी इच्छा है। तो चरण हृदय पर पकड़ू, आंखों से आपका रूप को निहारूं और जिह्वा से आपका नाम लेते रहूं और इस प्रकार से मुझे देहत्याग करने की इच्छा है। और आप बड़े दयालु हैं, ये मैं बहुत बड़ी इच्छा आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, मैं इसके पात्र नहीं हूं लेकिन आपके दया के कारण ये आप करा सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। चैतन्य महाप्रभु कहते, हरिदास यदि आप ये मांग रहे हो तो कृष्ण जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। प्रभु कहे, हरिदास ये तुम्ही मांगी बे, कृष्ण कृपाए तहा अवश्य करी बे। आप जो मांग रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण तो बहुत ही कृपालु है और आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। लेकिन क्या आप अकेला जाना चाहते हैं इस धरातल पर, मुझे अकेले छोड़ के मैं कैसे जी पाऊंगा आपके संग के बिना। किंतु अमार ये किचु सुख सब तो मालया, तुम्हारे योग्य न है या बे हमारे छाड़िया। मुझे संसार में जीते जी जो भी कुछ सुख मिल रहा है वो केवल आपके संग के कारण है हरिदास, केवल आपके संग के कारण है। बाकी मुझे इस संसार में कुछ सुख नहीं है, आपका संग ही मेरे लिए सुखावह है। और आप मुझे छोड़ के कैसे जाने की चेष्टा कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु आप माया मत उत्पन्न कीजिए, बिल्कुल माया मत उत्पन्न कीजिए। यहाँ पे हजारों हजारों भक्त मेरे से श्रेष्ठ है और मेरे सिर के ऊपर बैठने लायक है। मोर शिरोमणि कत कत महाशय तुम्हार लीलाए सहाय कोटि भक्त होय। मोर शिरोमणि कत कत महाशय, कितने बड़े बड़े महान भक्त है जो मेरे सिर के ऊपर बैठने के लायक है, वो मेरे सिर के ऊपर बैठ सकते है और जो आपके लीला में सहायता करने के लिए कोटि कोटि भक्त है। आमा है न यदि एक कीट मरी गेला एक पिपली का मैले पृथ्वीरा कहा हानि हैला। देखिए हरिदास ठाकुर की नम्रता, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आपके लीला में सहायता करने के लिए कोटि कोटि भक्तगण है और मैं तो आपके लीला में केवल एक कीड़ा जैसा हूं। एक पिपली का मैले पृथ्वीरा कहा हानि हैला, एक चीटी यदि मर जाती है तो पृथ्वी को कभी कुछ हानि होती है तो मेरा मरना मतलब एक चींटी का मरने के समान है, आपके लीला में कुछ हानि नहीं होगी। इस प्रकार से वो कहते हैं आप तो केवल भक्तवत्सल है और मैं तो भक्त भी कहने के लायक नहीं हूं, मैं तो एक कृत्रिम भक्त हूं, भक्त आभास, मैं कृत्रिम भक्त हूं। लेकिन फिर भी आप दयालु है, यदि आप चाहे तो मेरी इच्छा पूरी कर सकते है, आप तो स्वतंत्र ईश्वर है। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को वहीं पर आलिंगन करके अपने मध्यान्ह के नित्य कर्म करने के लिए वहां से चले जाते हैं और दूसरे दिन प्रातः काल सारे भक्तों को अपने साथ महाप्रभु लेके जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात हरिदास ठाकुर इनके दर्शन के लिए लेके आते हैं और महाप्रभु पूछते हरिदास से, हरिदास क्या समाचार है। हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु जो इच्छा तुम्हार, आपकी जो इच्छा है वही, जो आप कृपा करे वही समाचार है। फिर महाप्रभु जो है वो आंगन में जोर से हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। हरिदास ठाकुर शैया पर लेटे हुए थे, उनके इर्द गिर्द सारे भक्त बैठकर कीर्तन प्रारंभ करते हैं और वक्रेश्वर पंडित आंगन में नृत्य करना प्रारंभ कर लेते हैं। और हरिदास ठाकुर ने अभी महाप्रभु को अपने आंखों के सामने जो है वो बिठा लिया है। हरिदास निजाग्रेते प्रभुरे व साइला निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला। हरिदास ने अपने महाप्रभु को अपने सामने बिठाया है और निज नेत्र दुई भृंग मुख पद में दिला, महाप्रभु के उनकी दो आंखें मानो भृंग के समान है और महाप्रभु का चेहरा मानो कमल के समान है, तो उस कमल में अपने दो भृंगों को उन्होंने सौंप दिया है। और महाप्रभु हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं। हरिदासेर गुण कहिते प्रभु हैला पंचमुख, कहिते प्रभुर बाड़े महासुख। और महाप्रभु जो हरिदास ठाकुर का गुणगान करते जा रहे मानो पांच मुख है उन्हें और करते जा रहे। और हरिदास ठाकुर का गुणगान करने में महाप्रभु को अतीव आनंद और उल्लास महसूस हो रहा है और हरिदास ठाकुर ने अभी महाप्रभु के चरण अपने हृदय पर लगा लिए है। स्व हृदय आनी धरिला प्रभुर चरण सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। उन्होंने महाप्रभु के चरणों को अपने हृदय वक्षस्थल पर धारण कर लिया है और सारे भक्तों की चरण धूलि ले लेके हरिदास ठाकुर अपने माथे पर लगा रहे थे। देखिए उनकी नम्रता और भक्तों के प्रति उनका आदर। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बले न बार बार प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जल धार। श्री कृष्ण चैतन्य इसे बार 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 उनकी जीवा जो है वो उच्चारण चल रहा है। और प्रभु मुख माधुरी प्रिय नेत्रे जलधार, नेत्रों से निरंतर अश्रु का प्रवाह हो रहा है और जीवा से निरंतर भगवान के नाम का जप चल रहा है और नेत्रों से भगवान की माधुरी पी रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करीते उच्चारण, नामेर सहित प्राण कैल उत्क्रामण। श्री कृष्ण चैतन्य उन्होंने अंतिम बार बोला और जैसे ही शब्द उनके मुख से निकले मानो उनका प्राण भी अभी उनके शरीर से निकल गया था। महायोगेश्वर प्राय देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्याण सबार होइल स्मरण। जिस प्रकार से भीष्मदेव श्रीमद भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख भीष्मदेव ने अपना देह त्याग किया था और उन्हें इच्छा मरण जो है इच्छा मृत्यु इसका वर प्राप्त था। मानो उसी प्रकार से कोई योगी जिसे इच्छा मरण इसका वर प्राप्त हो, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर अपनी स्वयं की इच्छा से उन्होंने अभी जो है वो देह त्याग कर दिया है और कृष्ण कीर्तन वहां पर और जोर से प्रारंभ हो जाता है और चैतन्य महाप्रभु विवल हो जाते हैं। महाप्रभु क्या करते हैं, हरिदासेर तनु प्रभु कोले लैल उठैया, अंगने नाचे न प्रभु प्रेमाविष्ट हैया। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के उस मृत शरीर को अपने गोद में उठा लिया और अपने हाथ में उठाकर उसी आंगन के प्रांत में महाप्रभु नाचने लगते हैं और सब लोग उच्च रूप में भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। उसी समय चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से इंगित करते हैं कि अभी अगले कार्यक्रम की व्यवस्था आप कीजिए। उसी समय एक वाहन लाया जाता है जो विमान के जैसा था, हरिदास ठाकुर के मृत शरीर को उस वाहन के ऊपर रखा जाता है और सारे भक्त उसे समुद्र की ओर लेके जा रहे हैं। उच्च ध्वनि कीर्तन चल ही रहा है, कीर्तन कर रहे सारे भक्त। महाप्रभु उस विमान रूपी वाहक के सामने नृत्य कर रहे थे, वक्रेश्वर पंडित आदि सारे भक्त पीछे पीछे जो है वो कीर्तन करते हुए वहां पर जा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वयं के हाथों से हरिदास ठाकुर के शरीर को समुद्र में स्नान कराया, उन्हें नहलाया और महाप्रभु कहे कि आज से ये समुद्र जो है वो महातीर्थ बन गया है क्योंकि हरिदास ठाकुर ने इसे स्पर्श किया है। और सबने हरिदास ठाकुर के शरीर का चरणों का जो है वो समुद्र के ही जल से अभिषेक किया और उस जल को सबने ग्रहण किया और उसके पश्चात वहीं पर किनारे पर बालू में एक गड्ढा किया गया और उस गड्ढे में हरिदास ठाकुर इनका शरीर जो है वो रखा गया। शरीर के ऊपर जगन्नाथ मंदिर से लाया हुआ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी के कुछ रेशमी डोरियां, उनके निजी वस्त्र वो सब रखे गए और सारे भक्त इर्द गिर्द कीर्तन कर रहे थे और मिट्टी सारे अपने अपने हाथों से जो है वो डाल रहे थे और उस गड्ढे को बंद कर रहे थे और महाप्रभु स्वयं वहां पर जो है वो कार्य कर रहे थे। हरि बोल भले गौर राय, अपने श्री हस्ते वालो दिला तार गाय। हरि बोल इसका उच्चारण करते हुए महाप्रभु जो है वो अपने स्वयं के हाथों से जो है वो बालू वहां पर ढकेल रहे थे और जब वो पूरा गड्ढा भर जाता है वहां पर एक चबूतरा बनाया जाता है बालू का ही और उसके इर्द गिर्द जो है वो दीवार रूपी मानो एक आवरण लगाया जाता है और सारे भक्त भी उस समाधि रूप जो वहां पर चबूतरा था उसका प्रदक्षिणा करते हैं और प्रदक्षिणा करते करते जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन वहां पर होता है। और जब सारा कीर्तन हो गया, महाप्रभु और सारे भक्तगण जाते हैं, वो स्वयं समुद्र में स्नान करते हैं और स्नान करते पुनः कीर्तन करते 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 वो सारे भक्त अभी पहुंच जाते हैं सिंह द्वार पर। सारे नगर में जो है वो कीर्तन होता है, सिंह द्वार पे कीर्तन चलता है और स्वयं महाप्रभु वहां पे अलग अलग दुकानों में अपना वस्त्र फैलाकर भिक्षा मांग रहे थे और कह रहे थे हरिदास ठाकुर के लिए हमें महोत्सव करना है, प्रसाद चाहिए प्रसाद चाहिए। हरिदास ठाकुरेर महोत्सवेर तरे प्रसाद मांगिए भिक्षा देहत आमारे। प्रसाद की भिक्षा मांग रहे थे महाप्रभु और जब महाप्रभु स्वयं मांग रहे तो सारे दुकानदार टोकरियां भर भर के दे रहे थे। स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु से कहा, महाप्रभु आप आपके निवास स्थान पर चले जाइए, हम लोग इसे एकत्रित करेंगे। और स्वरूप दामोदर ने दुकानदारों से कहा कि इतनी टोकरियां भर के मत दीजिए, क्योंकि सारे लोग दे रहे थे, इतना प्रसाद हो रहा था, केवल चार मुट्ठी जो है वो करके आप हमें प्रसाद दीजिए। तो सारे दुकानदार इस प्रकार से प्रसाद लेते हैं, सारा प्रसाद सेवकों के साथ लेके स्वरूप दामोदर निवास स्थान पर महाप्रभु के वहां पर चले जाते हैं। वाणीनाथ, काशी मिश्र, ये भी जगन्नाथ जी का ढेर सारा प्रसाद जो है वो वहां पर भेजते हैं। अभी वहां पर जब पहुंच जाते हैं, महाप्रभु ने सारे भक्तों को पंक्तियों में बिठा दिया और स्वयं अपने हाथों से प्रसाद का वितरण उन्होंने जो है वो प्रारंभ किया। सारे भक्तों को प्रसाद वितरण हो रहा था, स्वरूप दामोदर कहे कि महाप्रभु आप स्वयं मत वितरण कीजिए, आप बैठ जाइए और केवल देखिए और हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे। और इस प्रकार से प्रसाद वितरण का जिम्मा अभी स्वरूप दामोदर, जगदानंद, काशीश्वर और शंकर पंडित, इन चारों ने ले लिया और सारे भक्तों को प्रसाद वितरित कर दिया। जोर से हरिबोल हरिबोल सारे भक्त कर रहे थे, लेकिन कोई प्रसाद खाने रहा था, क्योंकि जब तक चैतन्य महाप्रभु प्रसाद नहीं ग्रहण करते, कोई भक्त वहां पर प्रसाद नहीं ग्रहण करता था। तो फिर काशी मिश्र जाते हैं और कुछ और सन्यासियों को महाप्रभु के साथ बिठाया जाता है, परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, और फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर सारे भक्त प्रसाद लेना प्रारंभ करते हैं। जो सर्वर्स थे, जो सेवा परोस रहे थे प्रसाद, महाप्रभु सबको कहते हैं और बांटो और बांटो और बांटो करके जो है वो सारे भक्तों को आकंठ प्रसाद जो है वो खिलाया जाता है। और इसके बाद जब प्रसाद पूर्ण हो जाता है, सारे भक्त अपने हाथ मुंह धो लेते हैं, महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सारे उपस्थित भक्तों को माला पहनाते हैं और उनके माथे पे चंदन लगाते हैं, और महाप्रभु प्रेम के आवेश में सारे भक्तों को वहां पर जो है वो आशीर्वाद देते हैं। सारे भक्त जब संतुष्ट हो जाते हैं, महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं महाप्रभु? हरिदासेर विजयोत्सव ये कैल दर्शन, ये यहाँ नृत्य कैल, ये कैल कीर्तन। जिस जिस व्यक्ति ने हरिदास का इस विजयोत्सव में, विजय उत्सव कहते हैं, वास्तव में भक्त के लिए ये जो उसका तिरोभाव होता है, जब वो इस धरातल को छोड़ के जाता है, वो समय जो है उसे विजय उत्सव कहते हैं, क्योंकि वो भगवत धाम गया है वो भक्त, इसलिए उसे विजय उत्सव करके बुलाया जाता है। तो बर्थडे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तिरुभाव दिवस, इसलिए हमारे वैष्णव कैलेंडर में ज्यादा तिरुभाव दिन पाए जाते हैं आविर्भाव दिन की तुलना में। हरिदास विजयोत्सव ये कैला दर्शन, जिन्होंने दर्शन किया है इस विजयोत्सव का, ये यहाँ नृत्य कैला, ये कैला कीर्तन, जिन्होंने नृत्य किया है यहाँ पर, जिसने कीर्तन किया है, ये तारे वालू का दीते करिल गमन, तार मध्य महोत्सव ये कैला भोजन, जिस जिसने हरिदास ठाकुर के मूर्त शरीर के ऊपर वालू चढ़ाई थी और जिस जिसने यहाँ पर केवल आके भोजन भी क्यों नहीं प्राप्त किया हो, अचिरे हय बे तान सवार कृष्ण प्राप्ति, हरिदास दर्शने हय ऐच्छे शक्ति, उसे तुरंत कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ऐसी शक्ति थी हरिदास ठाकुर इन शुद्ध भक्तों के केवल दर्शन में। तो इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से मुझे हरिदास ठाकुर की संगति मिली थी, लेकिन हरिदास ठाकुर जब ये जगत छोड़ना चाहे तो कौन उन्हें रोक सकता है, भगवान की ऐसी इच्छा थी और उन्होंने उस इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। जिस प्रकार से भीष्मदेव स्वयं की इच्छा से इस जगत को छोड़े थे, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर अभी स्वयं की इच्छा से इस जगत को इन्होंने छोड़ा है और मुझे यहाँ पर अकेले विवल करके हरिदास ठाकुर चले गए हैं। हरिदास आछिल पृथ्वी वीर शिरोमणि, तहा विना रत्न शून्य होइल मेदिनी। मेदिनी का अर्थ है पृथ्वी। हरिदास ठाकुर अछिल पृथ्वीर शिरोमणि, हरिदास ठाकुर जो है वो पृथ्वी के ऊपर शिरोमणि के समान थे, अग्रगण्य महान भक्त थे, मनोरत्न थे, और तहा बिना, अभी जो हरिदास ठाकुर चले गए हैं तो उनके बिना ये पृथ्वी जो है वो रत्न शून्य हैल मेदिनी, ये पृथ्वी अभी रत्न शून्य हो गई है, बिल्कुल इस पृथ्वी को शोभा नहीं है। और जय हरिदास कहके महाप्रभु वहीं पर नृत्य करने लगते है और सारे भक्त भी वहां पर जो है वो कीर्तन नृत्य करते हैं। सबे गाय जय 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 हरिदास, नामेरे महिमा यह करिला प्रकाश। सारे भक्त जय हरिदास कह रहे थे, जिन्होंने इस धरातल पर जो है वो हरिनाम का प्रकाश इस रूप से फैलाया है कि उस वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। और इस प्रकार से सारे भक्तों को महाप्रभु विदा करते हैं और हर्ष और विषाद जो है वो वहां पर होता है। महाप्रभु हर्षित भी है और महाप्रभु जो है वो दुखी भी है। क्यों हर्ष है? क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है वो अपने भगवान के धाम में निज स्वरूप को प्राप्त किए हुए इसलिए हर्षित है, और दुखी इसलिए है कि इसके बाद अभी हमें उनका संग नहीं मिलेगा, इसलिए दुखी है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपना देह छोड़ देता है तो ये दोनों भावनाएं एक भक्त के मन में उपस्थित होती है, हर्ष और दुख। और कविराज गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार से जो है वो मैंने इस हरिदास ठाकुर इनके महाप्रयाण का वर्णन किया है। एत कहिलु हरि दासेर विजय यहाँ श्रवणे कृष्ण दृढ़ भक्ति है। इस प्रकार से मैंने हरिदास ठाकुर के विजयोत्सव का वर्णन किया है, जो भी भक्त इसे सुनता है कृष्ण दृढ़ भक्ति होए, भगवान कृष्ण में उनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। और क्या क्या इस वृत्तांत से हमें समझने को और सीखने को मिलता है? चैतन्य भक्तवात्सल्य इहाते ही जानी भक्तवांछा पूर्ण कैला न्यासी शिरो मणि। चैतन्य महाप्रभु कितने भक्तवत्सल थे, उनकी भक्तवत्सलता का दर्शन यहाँ पर होता है। कैसे? भक्तवांछा पूर्ण कैला न्यासी शिरोमणि। हालांकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासियों के शिरोमणि थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्त की इच्छा पूरी की। हरिदास ठाकुर ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि किस प्रकार से मैं इस देह को त्यागते समय मेरी जिह्वा केवल कृष्ण नाम का, श्री कृष्ण चैतन्य का उच्चारण करते रहे, मेरी आंख आपको देखती रहे और मेरे हृदय पर आपके चरण को रखूं। उन सारी इच्छाओं को महाप्रभु ने जो है वो पूरा किया था एक सन्यासी शिरोमणि होने के बावजूद। इसलिए जो है वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त वात्सल्य और अपने भक्तों के प्रति उनकी कृपा और वत्सलता ये यहाँ पर प्रकट होता है। और महाप्रभु ने क्या कुछ नहीं किया हरिदास ठाकुर के लिए? शेष काले दिला तारे दर्शन स्पर्शन तारे कोले करी कैला आपने नर्तन। आखिरी समय में महाप्रभु ने उन्हें स्पर्श किया, उन्हें दर्शन दिया, और न केवल उतना, उनका शरीर अपने स्वयं के गोद में उठाकर जो है वो उन्होंने नृत्य भी किया। आपने श्री हस्ते कृपाए ताले वालू दिला आपने प्रसाद मांगी महोत्सव कैला। स्वयं के अपने हाथों से महाप्रभु ने वालू वहां पर जो है वो उनके समाधि के यहाँ पर रचाई और स्वयं भिक्षा मांगकर दुकान दुकान द्वार द्वार में स्वयं भिक्षा मांगकर जो है वो हरिदास ठाकुर के प्रयाण के लिए ऐसा दिव्य महोत्सव किया। महाभागवत हरिदास परम विद्वान ए सौभाग्य लागी आगे करिला प्राण। कि हरिदास ठाकुर इतने महाभागवत थे, परम विद्वान भक्त थे, क्या सौभाग्य था उनका कि महाप्रभु के सामने उन्होंने अपने देह को त्यागा, उसकी इच्छा की और इच्छा भी पूरी हो गई। चैतन्य चरित्र यही अमृतेर सिंधु कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो चैतन्य चरितामृत है वो क्या है? अमृतेर सिंधु, ये अमृत का सिंधु है, और कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु, इसका एक बिंदु भी कोई व्यक्ति पा लेता है तो उसके कर्ण और उसका मन जो है वो तृप्त हो जाता है, ऐसा है चैतन्य चरितामृत। और जो कोई व्यक्ति इस भवसागर को तार पार करना उसके चित्त में है तो उसने केवल एक कार्य करना चाहिए। भव सिंधु तारी बारे आछे यार चित्त श्रद्धा करे सुन से चैतन्य चरित्र। जो भी व्यक्ति इस भव सिंधु को पार करना चाहता है, ऐसी उसकी चित्त में अभिलाषा है, उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? श्रद्धा करे सुन से चैतन्य चरित्र, श्रद्धा पूर्वक उस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य चरित्र को जो है वो सुनना चाहिए। और पहले श्लोक में महाप्रभु को और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अध्याय 11 का ये पहला श्लोक है। नमामि हरिदासम तम चैतन्यम च तत्प्रभुम संस्थिताम अपि यन्मूर्तिम स्वांके कृत्वा ननर्तयः। नमामि हरिदासम तम, मैं उन हरिदास ठाकुर इनको प्रणाम करता हूँ, और तम चैतन्यम च तत्प्रभुम, उनके प्रभु श्री चैतन्य उनको भी प्रणाम करता हूँ। क्या किया उन्होंने? संस्थिताम अपियन मूर्तिम, उनके मूर्त शरीर को उन्होंने स्वांके कृत्वा ननर्तः, उन्होंने जो है वो अपने गोद में उठाया और मूर्त शरीर को गोद में उठा के उन्होंने नर्त किया। ऐसे महान है हरिदास ठाकुर और महान है उनके प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, उन दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर वो इस अध्याय को विराम देते हैं। अध्याय 12 हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित इनके बीच में प्रेम का व्यवहार। बहुत सुंदर पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंतिताम चिंतिताम भक्तश्चैतन्य चरितामृतम। ये 12वें अध्याय का पहला श्लोक है। कविराज गोस्वामी कहते हैं श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, नित्य रूप से सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, गीयताम गीयताम मुदा और आनंदित होके गाते रहो गाते रहो गाते रहो, और चिंतिताम चिंतिताम भक्तास, हे भक्तों हमेशा चिंतन करते रहो चिंतन करते रहो चिंतन करते रहो। किस चीज का? चैतन्य चरितामृतम। बहुत सुंदर और अच्छा श्लोक है। केवल आप इसे 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, आपको ज्यादा परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। श्रूयताम श्रूयताम नित्यस गीयताम गीयताम मुदा चिंतताम चिंतताम भक्तश्चैतन्य चरितामृतम। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास किया करते थे, और जैसा हमने पूर्व में कहा दिन के समय वो दर्शन नृत्य कीर्तन प्रसाद ये सारे किया करते रहते थे, और रात के समय महाप्रभु भगवान के विरह भाव में जो है वो जाते थे। और विरह भाव कभी इतना बढ़ जाता था महाप्रभु का कि उनका उनका शरीर उस विरह भाव को सहन भी नहीं कर पाता था। हा हा कृष्ण प्राणनाथ व्रजेंद्र नंदन, कहां जाऊं कहां पाऊं मुरली वदन, मैं कहां जाऊं मैं कहां कहां पाऊं कहां कहां देखूंगा मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को। इस प्रकार से राधारानी का भाव अभी यहां पर जो है वो प्रकट किया करते थे महाप्रभु, और बड़ी कठिनाई से उनकी रात निकलती थी। एक वृत्तांत सुनाते हैं कविराज गोस्वामी। बंगाल से सारे भक्त हर साल की तरह हमें पता है जो जाते थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए, अद्वैताचार्य जाते थे उनकी पत्नी के साथ, श्रीवास ठाकुर उनकी पत्नी और उनके 3 भाई उनके साथ जाते थे, शिवानंद सेन उनके 3 पुत्र इनके साथ जाते थे, और राघव पंडित अपनी सारी झालियां लेके जो है वो महाप्रभु से मिलने के लिए सारे भक्त, फिर कुलीन ग्राम वाले खंडवासी सारे भक्त जाते थे। और शिवानंद सेन इनका प्रमुख यात्रा वो क्या थे, यात्रा मैनेजर के रूप में सारा सारे भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था और घाटी समाधान। घाटी समाधान करते हैं जो टोल नाका आएगा वहां पर टोल देना, और भक्तों की जो जहां पर जांच परीक्षण होगी उनका जो है वो समाधान करना। तो बताते हैं एक बार की बात थी, शिवानंद सेन इस प्रकार से घाटी समाधान कर रहे थे तो सारे भक्तों का बारकाई से परीक्षण किया गया, मतलब जो भी चेकिंग उस समय हुआ करता रहेगा तो सारा चेकिंग वहां पर हो गया, सारे भक्त आगे चले जाते हैं और शिवानंद सेन को वहां पर समाधान करने के लिए घाटी का थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है। तो सारे भक्त आगे चले जाते हैं, वो अगले गांव में पहुंच जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे अभी तक खड़े हैं, क्योंकि हमें भी पता है यात्रा में जो भक्त एडवांस पार्टी में जाता है आगे उन्हें सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, और यदि वो सबसे पीछे रह जाए तो आगे वाले भक्त परेशान हो जाएंगे कि रूम कौन सी है, चावी कौन सी है, प्रसाद कहाँ पे होने वाला है, सारे भक्त ऐसे चिंतित रहते हैं हमेशा। तो हरिदास ये जो शिवानंद सेन थे उनका वो कार्य था, लेकिन अभी वो पीछे रह गए घाटी समाधान के लिए और वहां पर सारे वृक्ष के नीचे खड़े थे। अभी नित्यानंद प्रभु वृक्ष के नीचे खड़े हैं और नित्यानंद प्रभु को गुस्सा आ जाता है, अभी तक मुझे निवास नहीं मिला है, कहां शिवानंद कहां शिवानंद। नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल हैया, शिवानंद गाली पड़े वासना पाइया। नित्यानंद प्रभु अभी भूख से व्याकुल हो रहे थे, भूखे व्याकुल हैया शिवानंद गाली, और शिवानंद को गाली दे रहे थे कि अभी तक मुझे निवास नहीं मिला है, मैं भूखा मर जाऊंगा कहां शिवानंद, और शाप देते हैं तुम्हारे 3 पुत्र मर जाए, ले लो 3 पुत्र मर जाए, ऐसा शाप दे दिया। और जैसे ही शिवानंद की पत्नी वहीं पर खड़ी थी वो सुनती है कि 3 पुत्र मर जाए, हाय हाय क्या शाप दिया। सुनी शिवानंदेर पत्नी कांदीते लागिला, हे न काले शिवानंद घाटी हईते आईला। शिवानंद की पत्नी तो अभी रो रही थी कांदीते लागिला, कांदीते रोते रोते बिलग रही थी, और शिवानंद सेन जो वहां पर घाटी समाधान करके आ जाते हैं, और पत्नी उनकी बताती है देखो नित्यानंद प्रभु क्रुद्ध हो गए, उन्होंने शाप दिया है कि अपने 3 पुत्र मर जाए। शिवानंद सेन कहते हैं कि अरे नित्यानंद प्रभु को असुविधा हुई और उसके कारण हमारे 3 पुत्र मर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा दंड नहीं है, इससे और ज्यादा दंड इन्हें हमें देना चाहिए, उन्हें जो है वो असुविधा कदापि नहीं होनी चाहिए। और फिर वहां से वो मिलने के लिए जाते हैं शिवानंद सेन, नित्यानंद प्रभु कहां है, और नित्यानंद प्रभु के पास जब जाते हैं नित्यानंद प्रभु जोर से उनके छाती के ऊपर लात प्रहार कर देते हैं। तो जैसे लत्ता प्रहार हो जाता है शिवानंद सेन गिर जाते हैं नीचे और हंसने लगते हैं और आनंदित हो जाते हैं। और वो नित्यानंद प्रभु को जो है वो पकड़ के उनके चरण कमलों में गिर पड़ते हैं और उन्हें पकड़ के एक आवास देते हैं, एक ग्वाल बाल था उनके घर पे जो आवास देते थे। तो इस प्रकार से वो एडवांस पार्टी वगैरह कुछ होता नहीं था, जहाँ पे कुछ घर वर मिल जाते थे वहीं पर वो लोग रुक लेते थे। ग्वालों के घर में गाय का दूध मिल गया, कुछ खाने को मिल गया, इस प्रकार से उनका चलता था। और क्योंकि खुद भी घर सब सामान निकल के चलते थे तो खाना पकाना वो भी उन्हें ही करना पड़ता था। तो एक ग्वाले के यहाँ पे नित्यानंद प्रभु की रहने की जो है वो व्यवस्था कर दी। और शिवानंद सेन अभी चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं, आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, ये मन अपराध भृत्यर योग्य फल दिला। आज जो है आपने मुझे लात मार के जो है वो आपने, मैं अभी समझ गया हूं कि आपने मेरा अंगीकार किया हुआ है, क्योंकि अपना जो निजी भक्त है, अपना जो जैसे कहते ना क्लोज, जितना संबंध अच्छा है उतना उसके ऊपर क्रोध जताया जा सकता है। तो आज मैं समझ गया कि आपने मेरा निज भृत्य करके स्वीकार किया हुआ है और आपने योग्य फल दिया है ये शाप देकर, और आपने जो है मुझे लत्ता प्रहार कर जो आपका दंड है वो कृपा के समान ही है। आपके चरित्र को नित्यानंद प्रभु कौन समझता है? ब्रह्मा जी को भी जो दुर्लभ है वो चरण धूल आज मुझे प्राप्त हुई है, कितना सौभाग्य है मेरा। आज मेरा सारा जन्म, मेरा कुल, मेरा धर्म, मेरे कर्म, सब कुछ जो है वो सफलता को प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि आज आपने मुझे अपने निज भृत्य के रूप में स्वीकार किया हुआ है। नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और शिवानंद सेन का आलिंगन करते हैं, और शिवानंद सेन प्रसन्नता पूर्वक वहां से बाहर आते हैं कमरे से, और अभी दूसरों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अद्वैताचार्य, बाकी सारे भक्त, राघव पंडित, इनकी अभी वो व्यवस्था लगा रहे थे। नित्यानंद प्रभु रसब चरित्र विपरीत, क्रुद्ध हैयाला तमारी करेता तहित। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का चरित्र जो है थोड़ा विपरीत ही है, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं। लात मारकर भी वो जो है वो अपनी कृपा ही दिखा रहे हैं भक्तों के प्रति। शिवानंद सेन के बहन का एक लड़का था जिसका नाम था श्रीकांत, उनका भांजा मतलब। तो श्रीकांत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि शिवानंद सेन को, मेरे मामा को लात मारी किसी ने। तो वो बोला कुछ नहीं जब शिवानंद सेन थे वहां पर, लेकिन जब शिवानंद सेन जब वहां पर नहीं थे तब वो अपनी ओर से टिप्पणी करता है कि मेरे मामा को लात मारी नित्यानंद प्रभु ने। अरे नित्यानंद प्रभु को पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु के कितने बड़े पार्षद है शिवानंद सेन, कितनी कृपा चैतन्य महाप्रभु की इन्हें मिली हुई है। आज मैं सीधा जाऊंगा और महाप्रभु से कंप्लेंट करूंगा इनकी। और वो वहां से सारे पार्टी का संघ छोड़ देते हैं और अकेले पहुंच जाते हैं कहां पर, चैतन्य महाप्रभु के सीधा निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। और महाप्रभु को वो बड़ा एक कोट वगैरह पहने हुए थे और वैसे ही दंडवत करते हैं। और गोविंद कहता है, अरे कोट तो उतारो पहले, कोट बीट उतार के दंडवत किया जाता है महाप्रभु से। महाप्रभु से ऐसे आ गया कोट बीट पहन के, तो महाप्रभु गोविंद को रोकते हैं। प्रभु कहे, श्रीकांत आसिया छे पाइया मनो दुख, किचुना बलिह करुक याते इहार सुख। महाप्रभु कहते हैं कि देखो श्रीकांत सेन जो अभी यहां पर आया हुआ है उसके मन में दुख है, वो दुख लेके आया हुआ है, आप कुछ मत बोलिए, जो कर रहा है करने दीजिए। श्रीकांत सेन जब सुनता है दुख पाकर आया है करके, बोले महाप्रभु को कैसे समझ में आ गया, महाप्रभु तो सर्वज्ञ है, मतलब महाप्रभु को सब समझ में आ गया। फिर श्रीकांत महाप्रभु के चरण वंदना करता है, महाप्रभु सब कुछ पूछते है, क्या है, कैसे, सब लोग क्यों नहीं आए, कहां पर है। तो श्रीकांत सेन बताता है कि मैं थोड़ा आगे आ गया, लेकिन वो वृत्तांत नहीं सुनाता है, वो लात मारने वाला वृत्तांत सुनाने वाले थे लेकिन उन्होंने नहीं सुनाता, क्योंकि उन्हें वो जान गए कि महाप्रभु जान गए होंगे क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और महाप्रभु फिर सारे भक्तों के बारे में पूछते हैं और श्रीकांत सेन सबके बारे में सुनाता है, और थोड़ी देर के पश्चात सारे भक्त जो है वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें रहने के लिए कमरे दिए जाते हैं, उनके प्रसाद की व्यवस्था की जाती है, और शिवानंद सेन अपने तीनों पुत्रों के साथ महाप्रभु से मिलते हैं। और तीसरा पुत्र अभी अभी कुछ समय ही हुआ था, शायद हुआ रहेगा, कुछ महीने या साल हुआ रहेगा, तो महाप्रभु का परिचय नहीं है अभी सबसे छोटे बच्चे से। तो पिछले अध्याय में हमने चर्चा किया था उनके एक पुत्र जिनका नाम था चैतन्य दास, कल के अध्याय में हमने चर्चा की थी जब वो प्रसाद के लिए गए थे। तो ये शायद एक डेढ़ साल का रहेगा। तो महाप्रभु पूछते इसका नाम क्या रखा है, तो शिवानंद सेन कहते हैं कि परमानंद दास। तो वास्तव में जब पिछली बार आए थे तब वो गर्भ में था, और तब महाप्रभु ने कहा था कि इसका नाम पुरीदास रखना, तो लेकिन इन्होंने नाम रख दिया था परम आनंददास। तो महाप्रभु फिर पुरीदास कहते उसे, खुश होते हैं और अपने चरणों का अंगूठा उस बालक के, उस शिशु के मुख में दे देते हैं। और इस प्रकार से सारे शिवानंद के जो परिवार था वहां पर महाप्रभु की कृपा थी। शिवानंद सेन इनकी सौभाग्य के सागर की तुलना कोई नहीं कर सकता, इसे लांघा ही नहीं जा सकता। महाप्रभु ने गोविंद से कहा था, जब तक शिवानंद सेन की पत्नी और उनके बच्चे यहां पर है, मेरा उच्चिष्ट प्रसाद उनके लिए हर रोज जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा शिवानंद सेन के परिवार के ऊपर महाप्रभु की अतीव विशेष कृपा जो है वो बरसती रही थी। नादिया में जब महाप्रभु रहा करते थे, उनके बगल में ही एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था परमेश्वर। वो हलवाई था पेशे से। हलवाई को बंगाली में मोदक कहते हैं। हम जो मोदक खाते हैं वो मोदक नहीं। तो ये जो मोदक से मुझे याद आया, हम लोग गणपति को मोदक अर्पण करते हैं। हरिदास ठाकुर जी का प्रयाण की जो हमने चर्चा की पिछले अध्याय में, हरिदास ठाकुर जी का जो महाप्रयाण हुआ वो अनंत चतुर्दशी को ही हुआ है। उस दिन उनका तिरुभाव मनाया जाता है, जिस दिन गणेश विसर्जित किए जाते हैं। तो ये वो दिन था, वो मुझे मोदक से याद आया। तो परमेश्वर मोदक जो हलवाई थे, तो महाप्रभु जब छोटे बच्चे के रूप में, उनका घर बगल में ही था, तो वहां पर जब जाते थे तो ये परमेश्वर मोदक महाप्रभु को कुछ ना कुछ मिठाई दिया करते थे और महाप्रभु खाया करते थे जब वो निमाई के रूप में वहां पर जाया करते थे। तो वो अभी यहां पर आए थे और उन परमेश्वर का छोटा लड़का था जिसका नाम था मुकुंद, जो महाप्रभु का संगी था, फ्रेंड, बचपन का भी दोस्त था। तो महाप्रभु को वो मिलते हैं और परमेश्वर बताते हैं, याद आया आपको मैं वही हलवाई हूँ। महाप्रभु तुरंत उनके चरण में झुक जाते हैं, याद आया आप मुझे बहुत सारी मिठाइयां दिया करते थे, कैसे सब कुशल मंगल तो है? महाप्रभु सारा पूछते हैं और वो भी सब कुछ कुशल मंगल बताते हैं और जो मिठाइयां अभी लाई थी वो उन्हें सुपुर्द करते हैं और कहते हैं कि मुकुंद की माता भी आई हुई है। जैसे महाप्रभु सुनते हैं मुकुंद की माता, महाप्रभु थोड़ा संकोचित हो जाते हैं क्योंकि वो सन्यासी का व्रत का दृढ़ता से पालन कर रहे थे और जो भी इन सब की पत्नियां आती थी वो दूर से ही महाप्रभु को प्रणाम करती थी, वो नजदीक नहीं आया करती थी। तो लेकिन ये जो परमेश्वर पहली बार महाप्रभु को अभी मिलने के लिए आए थे और स्नेह के कारण महाप्रभु कुछ बोलते नहीं है और उनका सारा जो मिठाई वगैरह भी दिया हुआ है वो सब स्वीकार जो है वो कर लेते हैं। और पूर्ववत उसी प्रकार से सारे महोत्सव, गुंडीचा मंदिर मार्जन, सारे भक्त एकत्रित आके रथ यात्रा के सामने नृत्य, जन्माष्टमी महोत्सव, हेरा पंचमी महोत्सव, ऐसे सारे महोत्सव जो है वो होते हैं। और चार महीने तक सारे भक्त अलग अलग रूप से, जो मालिनी शिवा ठाकुर की पत्नी, अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरणी, सारे महाप्रभु को आमंत्रित करते हैं और अपने अपने यहाँ पे जो है वो प्रसाद दिलाते हैं। बंगाल के सारे भक्त अभी जब जाने का समय हुआ था, सारे भक्त आज्ञा मांगने के लिए महाप्रभु के पास आए हुए हैं। महाप्रभु हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी जा रहे हैं। महाप्रभु उनसे कहते हैं कि आप जो हर साल आते हैं इतना दूर, इतना समय आप यहाँ पर रहते हैं और इतना दूर जाते हैं, आपको बहुत कष्ट होता है और उस कष्ट से मुझे कष्ट होता है। हालांकि मैं तो केवल यहाँ पे जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम में रहता हूँ, मुझे कुछ बाकी कष्ट नहीं होता है, लेकिन आप आपका सारा परिवार छोड़ के आते हैं, आप सब सारा आपका कामकाज छोड़ के आते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ के आते हैं और इतना दुर्गम पथ से चल के हुए आते हैं, आपको बहुत कष्ट होता होगा और उस कष्ट को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैं ऋणी हूं आपका और आपको मिलने की अभिलाषा मेरी हर दिन ब दिन जो है उत्कंठा बढ़ती जाती है। मैं ऋणी हूं लेकिन मैं सन्यासी हूं, मेरे पास धन नहीं है, मैं आपका ऋण को कैसे चुकता कर सकता हूं? ऐसा महाप्रभु जो है उन्हें बोलते हैं। देह मात्र धन तो माए कैलू समर्पण, तहां विकाई यहां वेचिते तोमार मन। महाप्रभु कहते हैं देह मात्र धन तोमाय कैलू समर्पण, मेरा एकमात्र धन है। क्या है मेरा धन? ये देह ही मेरा धन है, उसे मैं आपको सौंपता हूं, जहां आप इसे बेचना चाहिए उसे बेच दीजिए। इतना महाप्रभु का उन भक्तों के प्रति जो है वो प्रेम था। प्रभुर वचने सबार द्रवीभूत मन, अझुर नयने सबे करे न क्रंदन। इस प्रकार से जब महाप्रभु के प्रेम भरी वाणी सारे भक्त सुन रहे थे, प्रभुर वचने सबार द्रवीभूत मन, सारे भक्तों के मन जो है वो द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं और आंखों से आश्रु आ रहे और सारे भक्त वहां पर रोने लगते हैं। महाप्रभु सारे भक्तों को आलिंगन करते हैं और अभी आज्ञा लेने के लिए आ रहे, अभी यहां से निकलना था लेकिन नहीं निकल पाते विरह के कारण, और 5-7 दिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि और वहीं पर वो लोग रुक जाते हैं और उसी प्रकार से उनका जो है वो कृष्ण कथा चलती रहती है। अद्वैत आचार्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप तो सारे 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 सारा जगत आपके प्रति कृतज्ञ है महाप्रभु, आपकी वाणी में कुछ अधिक शक्ति है, वो वाणी, वो मधुर वाणी एक डोरी के समान हमें बांध के रखती है और हम यहां से निकल ही नहीं पाते, क्या करें, क्या क्या आपकी जो है वो वाणी इतनी मधुर है। नित्यानंद प्रभु को भी देखिए, नित्यानंद प्रभु को आपने आज्ञा दी कि बंगाल में रहना, वहां पर प्रचार करना, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को मना किया था कि यहां मत आया कीजिए, हर साल 4 महीने के लिए प्रीचिंग प्रोग्राम बंद हो जाता है वहां पर, आप वहीं पर रुके रहिए, यहां मत आ जाइए, और आने जाने में भी कितना समय लगता है, कठिनाई होती है। महाप्रभु कहे थे कि आप मत आइए, लेकिन फिर भी आपको मिलने के लिए नित्यानंद प्रभु जो है वो हमेशा आते रहते, इस प्रकार से अद्वैताचार्य कहते हैं। और फिर आखिरकार सारे भक्तों को एक दिन जाना ही होता है वहां से। चले सब भक्तगण रोदन करिया, महाप्रभु रहिला घरे विषण होइया। इस प्रकार से सारे भक्त वहां से रोते 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 जो है वहां से निकलते थे बंगाल की दिशा में, और महाप्रभु विषण अपना खिन्न मन लेके वो घर के अंदर बैठे रहते थे। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये भक्त यहीं पे क्यों नहीं रहते थे, फिर ये वापस क्यों जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि सारे भक्त जो है वो कठपुतले के समान है, और चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, जिस प्रकार से इन कठपुतलियों को नचाया जाए उस प्रकार से वो नाचते थे। काष्ठेर पुतलिये न कुहके नाचाय, ईश्वर चरित्र किछु भुजन न आय। काष्ठेर पुतली कुहके ये न नचाय, कुहक मतलब जो जादूगर जिस प्रकार से कठपुतली को नचाता है, उस प्रकार से स्वतंत्र ईश्वर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को जो है वो नचाते हैं। पिछले साल जगदानंद पंडित नदिया ग्राम गए थे, नदिया गए थे जगदानंद पंडित, हमने सुना है उनके बारे में, महाप्रभु के बहुत ही प्रेमी और निजी पार्षद हैं। तो पिछले साल वो नदिया गए थे महाप्रभु की आज्ञा लेकर, सारे भक्तों को मिले थे, शची माता को वो मिले थे, और बता रहे थे कि आप जब भी भोग लगाती है महाप्रभु वहां पर उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं। शची माता कही कि हाँ मैं देखती हूँ भोजन गायब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सपना देख रही हूँ, और पुनः अर्पण करती है। तो वो कहते कि ऐसा नहीं है माता, वो भी कहते हैं आई ऐसा नहीं है, महाप्रभु जो है वो आया करते हैं और आपके द्वारा जो भी भोजन है वो स्वीकार किया करते हैं। और फिर अद्वैताचार्य के पास जाते थे, उन्हें कृष्ण कथा सुनाते थे, राघव पंडित से मिलते थे, शिवानंद सेन से मिलते थे, इन सब भक्तों को, सारे भक्त जब जगदानंद पंडित से महाप्रभु के बारे में सुना करते थे, वो सारे भक्त सुनते 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 अपने आप को भी भूल जाते थे। चैतन्य प्रेम पात्र जगदानंद धन्य, यारे मिले सही माने पाईलू चैतन्य। ऐसे धन्य है जगदानंद प्रभु, महाप्रभु के कृपा पात्र प्रेम पात्र भक्त थे जगदानंद पंडित, और यारे मिले सही माने पाईलू चैतन्य, जिसे जिसे वो मिलते थे उन लोगों को लगता था मानो मैं चैतन्य महाप्रभु से ही मिला हूं। और शिवानंद सेन के घर पर जब जगदानंद पंडित थे, तब उन्होंने जो है वो 16 शेर सुगंधी चंदन एकत्रित किया था, और मिट्टी के घड़े में बहुत ही संभल कर महाप्रभु के लिए वो सुगंधित तेल वो लेके आए थे। और जब वो आए उन्होंने सारा तेल गोविंद को सुपुर्द किया, और गोविंद को कहा था कि महाप्रभु को इसे मसाज के लिए दे देना। गोविंद महाप्रभु से कहता है, महाप्रभु ये जगदानंद छोड़ के गया है आपके लिए, उसने कहा है कि आपके सिर के ऊपर थोड़ा मसाज कीजिए, आपका जो पित्त और वायु है उसका प्रकोप कम हो जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। महाप्रभु क्रुद्ध होके कहते, ये बिल्कुल तेल बिल मुझे नहीं चाहिए। प्रभु कहे, सन्यासीर नहीं तैले अधिकार, तहाते सुगंधित तैल परम अधिकार। तेल बिल तो सन्यासी कभी प्रयोग ही नहीं करता, और सुगंधी तेल है तो उसका तो परम धिक्कार, उसको तो त्याग ही करना चाहिए। जगदानंद को बोलो वो दीप जलाने के लिए जगन्नाथ मंदिर में दे दे, उसका प्रयत्न सफल हो जाएगा, तो उधर दीप जलाने के लिए जगन्नाथ मंदिर में काम आएगा। गोविंद जब जगदानंद को सुनाते, जगदानंद बिल्कुल मौन व्रत, बिल्कुल चिड़ी चुप, कुछ बोलते नहीं है, और 10 दिन के लिए यह मौन व्रत चलता है उनका, और 10 दिन जगदानंद मौन है, महाप्रभु को पता नहीं है, लेकिन गोविंद आके सुनाता है, महाप्रभु वो जगदानंद का तेल आप प्रयोग कीजिए ना कृपया करके, कितनी मेहनत करके लाया है। महाप्रभु कहते हैं कि क्रोध करते हैं, यार तेल लाया ना, थोड़ा मालिश वाला भी लाके रखो, मसाज विशाज रोज किया करो मेरी थोड़ा मालिश वाला बोले वो भी लेके आओ। और इस प्रकार से महाप्रभु क्रोध जताते हैं, क्रोध जताते है यही सुख लागी आमी करीनो संन्यास हमारा सर्वनाश तो मार सबार परिहास। इसलिए मैंने संन्यास लिया है, मसाज करते रहो सुखपूर्वक सो और केवल इस प्रकार से जो है वो मेरा सर्वनाश हो जाए और आप लोगों को परिहास करने का मौका मिल जाए। वाह रे वाह, तेल 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 लगा, तेल लगा कि यदि मैं रास्ते से जाऊंगा उसकी सुगंध आएगी, सारे लोग कहेंगे देखो दारी सन्यासी जा रहा है। दारी सन्यासी, दारी सन्यासी का अर्थ होता है कि ऐसा सन्यासी जो तांत्रिक है और स्त्रियों को अपने घर में रखा करता है, उसे कहते हैं दारी सन्यासी। सारे लोग दारी सन्यासी कहकर उपहास करेंगे और आप लोगों को प्रयास के लिए मौका मिल जाएगा। गोविंद जब ये संदेश जगदानंद को सुनाते, जगदानंद भी क्रोधित हो जाता है, अभी और उसका क्रोध बढ़ जाता है। जगदानंद कहता है झूठी वार्ता मत बता, कब लाया था मैंने तेल, मैं तेल लाया ही नहीं हूं। जगदानंद भागते भागते महाप्रभु के घर में जाते हैं, वो घड़ा उठाते और आंगन में जोर से फेंक देते हैं। एत बली घर हईते तैल कलश लैया प्रभु रागे अंगनाते फेलीला भंगिया, फेंक देते और वो भंग हो जाता है। और वहां से जो है वो कहते मैंने तेल लाया नहीं था, लेके आंगन में फेंक दिया, फूट गया सारा तेल, तेल तेल यहां हो जाता है। और जगदानंद भाग के भागते अपने घर में जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और बैठ जाते हैं। पहले तो मौन व्रत था 10 दिन का, अभी अभी खाना बंद कर देते हैं। वे 3 दिन तक बिल्कुल उपवास, कुछ खाया नहीं जगदानंद ने। 3 दिन के बाद महाप्रभु को समझ में आता है, गोविंद समाचार देते हैं कि कुछ खाया नहीं है। महाप्रभु जाते उनके दरवाजे पर, दरवाजा ठकटाते हैं, बिल्कुल दरवाजा खोल नहीं रहे जगदानंद। महाप्रभु कहते देखो जगदानंद उठो, मैं अभी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं, आने के बाद आपके यहां पर प्रसाद के लिए आऊंगा। लो अभी महाप्रभु ने ऐसा बोल दिया तो जगदानंद को क्या दूसरा रास्ता नहीं था। जगदानंद बेचारे उठ जाते हैं, उठ के स्नान करते हैं, भोजन कराते हैं और महाप्रभु जब आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पश्चात, वो उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जगह बनाते हैं, धोने के पश्चात एक आसन डालते हैं और आसन के ऊपर महाप्रभु को बिठाया है, केले के पत्ता सामने रखा गया है और मानो एक पर्वत के रूप में वहां पर भात रखा गया है, एक पर्वत के रूप में, और उसके इर्द गिर्द चारों दिशाओं में सब्जी के द्रोण रखे गए हैं, कई सारी सब्जियां रखी गई है और तुलसी मंजरी रख के महाप्रभु को भोग लगाया गया है। महाप्रभु कहते जगदानंद आप भी बैठो, हम दोनों साथ में खाएंगे। जगदानंद कहते नहीं महाप्रभु, पहले आप खा लीजिए, पहले आप खा लीजिए। महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करना शुरू करते हैं और कहते वाह क्या स्वाद है, क्रोधावेशेर पाकेर हय ऐचे स्वाद एत जानिए तोमाए कृष्णर प्रसाद। क्रोध में भी आपने खाना बनाया है उसका भी इतना स्वाद है, इसका अर्थ यह है कि कृष्ण की आपके ऊपर जरूर कृपा हुई है। कृष्ण स्वयं भोजन करते हैं और इसलिए जो है वो आपसे इतना सुंदर भोजन कृष्ण बनवाते हैं। ये अमृत तुल्य भोजन है और इसका जो है वो कुछ स्वाद का जो है वो कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कृष्ण ने आपके ऊपर इतनी कृपा की है, आपके सौभाग्य की सीमा उसका वर्णन नहीं हो सकता। जगदानंद, जगदानंद पंडित महापुरुष कहते हैं कि खाने वाला भी वही है और बनाने वाला पाक करता भी वही है, मैं तो केवल सारी जो है वो सामग्री एकत्र करने का काम करता हूं और परोसते हैं, क्योंकि महाप्रभु अभी जैसे कई कई बार भक्त जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते हैं कहते हैं खीर कितनी अच्छी हुई तो उन्हें और परोसी जाती है, तो महाप्रभु और गुणगान कर रहे हैं प्रसाद का और जगदानंद पंडित सर्व करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे। पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेशे भय किचु ना बले न प्रभु खाए न हरिशे। अभी पुनः पुनः जो है वो और अन्य व्यंजन डाल रहे और व्यंजन डाल रहे। महाप्रभु भी भयभीत, पहले 10 दिन मौन व्रत था, अभी 3 दिन उपवास था, अभी और कुछ कुछ बोल दे तो पता नहीं क्या करेगा। तो महाप्रभु भय से खा रहे खा रहे खा रहे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जितना हर रोज खाते थे उससे 10 गुना अधिक खा लिया, लेकिन फिर भी परोसना बंद। महाप्रभु भी उठते थे तो और परोस देते थे, महाप्रभु उठते थे बस हो गया बस हो गया, जगदानंद और परोस देते थे और इस प्रकार से उनका परोसना चल गया। महाप्रभु किछु बलिते नारे न प्रभु खाए न त रासे न खाइले जगदानंद करीबे उपासे। यदि मैं नहीं खाऊंगा तो डर के मारे महाप्रभु डर रहे डर रहे डर रहे डर के मारे खा रहे, यदि मैं डर नहीं खाऊंगा तो यह और कुछ उपवास कर लेगा, इसका कुछ बोला नहीं जा सकता। महाप्रभु कहते अरे भाई मैं 10 गुना अधिक खा लिया हूं रोज के तुलना में। फिर जगदानंद जो है वो रुक जाते हैं। हाथ मुंह धोने के पश्चात जगदानंद स्वयं अपने हाथ से महाप्रभु को माला और चंदन अर्पण करते हैं और महाप्रभु कहते जगदानंद आप मेरे सामने अभी खाने के लिए बैठ जाइए। जगदानंद कहते हैं नहीं महाप्रभु आप चले जाइए, मैं जरूर अवश्य खा लूंगा, क्योंकि मुझे जो है वो यहाँ पर मुझे मदद करने के लिए रामाई और रघुनाथ आए थे, तो मुझे उन्हें भी जो है वो कुछ सब्जियां और भोजन जो है वो परोसना है, बना के कुछ देना है, तो आप चले जाइए। तो महाप्रभु जाते हैं और गोविंद को कहते हैं आप यहीं पे रुको और जब जगदानंद भोजन कर लेगा मुझे सूचना दे देना। और महाप्रभु वहां से चले जाते हैं। जैसे महाप्रभु चले जाते हैं जगदानंद गोविंद को कहते हैं अरे जा महाप्रभु चले गए उनका पाद सम्मान करना होगा तू चला जा उन्हें बोल देना कि मैं बैठ गया हूँ खाने के लिए। तो गोविंद चला जाता है। गोविंद चला जाता है महाप्रभु गोविंद को कहते हैं कि वापस जाओ देख के आओ खाया है कि नहीं मुझे बता। तो गोविंद को वापस आता है गोविंद और इस प्रकार से गोविंद जब वापस आते हैं तो जगदानंद पंडित जो रामाई नंदाई रघुनाथ वो थे उन सबको महाप्रभु का शेष जो है वो महाप्रसाद खिलाते हैं और गोविंद वापस आके महाप्रभु को सूचना देता है कि इस प्रकार से उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और महाप्रभु उसके बाद जो है वो सुखपूर्वक निद्रा करते हैं। जगदानंदे प्रभुते प्रेम चले ऐ मते सत्यभामा कृष्ण ये छे शुनि भागवते। भागवत में ऐसे हमने सुना है कि सत्यभामा और कृष्ण इनका जो प्रेम का झगड़ा हुआ करता था उसी प्रकार से जगदानंद पंडित कौन है वो सत्यभामा के ही कृष्ण लीला के अवतार माने जाते हैं चैतन्य लीला में। तो इस प्रकार से उनका जो है वो दिव्य झगड़ा होता हुआ करता था। जैसे हमने देखा कि दो प्रकार के भक्त महाप्रभु के थे, एक थे वामपंथी और दूसरे थे दक्षिणपंथी। वामपंथी भक्त मतलब जिनके साथ महाप्रभु झगड़ा किया करते थे वो थे जगदानंद पंडित और दूसरे थे दक्षिणपंथी वो थे गदाधर पंडित जो रुक्मिणी जैसे मतलब शांत स्वभाव वाले कुछ भी थोड़ा भी बहुत कुछ बोल दिया तो वो रोने लगते थे शांत बैठते थे कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देते थे। तो जगदानंद पंडित का जो भाग्य था उसकी सीमा का बिल्कुल वर्णन नहीं किया जा सकता। कविराज गोस्वामी कहते हैं जगदानंदेर प्रेम विवर्त शुने ये जन प्रेमेर स्वरूप जाने पाय प्रेम धन। जगदानंदेर प्रेम विवर्त ये जो प्रेम का जो उनका झगड़ा था यदि जो कोई इसे सुन लेता है प्रेमेर स्वरूप जाने पाय प्रेम धन। वास्तव में प्रेम क्या होता है वो प्रेम का स्वरूप कोई जो भगवत प्रेम है उसे जान लेता है और उसे भगवान कृष्ण के प्रति जो है वो पाय प्रेम धन उस प्रेम रूपी धन की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर कविराज गोस्वामी विराम देते हैं। जय जय श्री रूप रघुनाथ पदेयर आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो यहाँ पर जो है वो विराम दिया जाता है महाप्रभु की इस लीला को। और अभी कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी इनका मिलन तो हमने देखा था छठे अध्याय में। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इनका मिलन देखा था। अभी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उसका वर्णन अगले अध्याय में होगा। यदि आपको सुनना है तो मिलेंगे हम कल ठीक शाम को 5:30 बजे। अभी हमारा समय है आज के प्रश्न का। तो प्रश्न आसान कठिनतम भक्त पहले कि यह कठिनतम प्रश्न था प्रश्न प्रश्नतर और प्रश्नतम। तो प्रश्नतम की हम आपको थोड़ी थोड़ी झलक दे रहे हैं। तो ये प्रश्न था अध्याय दूसरा सिंपल था कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण क्षीरोदकशायी विष्णु के अवतार है और ये कथन क्या असंभव है संभव है अव्यावहारिक है या अविवेकी है। तो ये वर्णन आता है अध्याय लीला दूसरे अध्याय में आखिरी श्लोक में 111, 12, 13, 14, 15 यदि आप इन्हें पढ़ेंगे तो कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं ये फ्लो से रिलेटेड है कि कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण सारों के अवतार है और बाकी सारे तो केवल बाकी सारे अवतार है कृष्ण जो अवतारी है उनसे सारे अंश और विस्तार एतेच अंश कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये सारे उनके अंश है। फिर क्षीरोदकशायी गर्भोदकशायी कारणोदकशायी ये सारे उनके अंश है। और आखिर में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण नारायण से आते हैं या कृष्ण ही नारायण है या कृष्ण क्षीरोदकशायी से आते हैं। तो वहां पर उन्होंने लिखा है कि यह सब संभव है। क्यों संभव है क्योंकि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण इच्छा बलि असी वो कुछ भी कर सकते हैं इसलिए ये भी संभव है। इसलिए इस सवाल का जवाब आपके जनरल नॉलेज से यदि देखा जाए तो ये असंभव है क्योंकि कृष्ण से क्षीरोदकशायी विष्णु आते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है कि क्षीरोदकशायी विष्णु से कृष्ण आना यह भी संभव है क्योंकि कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं इसलिए इस सवाल का जवाब जो है वो बी संभव है इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो ये था प्रश्न। तो मिलेंगे हम कल ठीक शाम को 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।